रिकॉर्ड है महफिल में जरूर की क्षमा परवाने के लिए। रूहानी बच्चे जानते हैं कि जीव की जो आत्मा है वो कह रही है कि हमको अभी पाप मिला है, उनसे हमारी प्रीति। बच्चे जानते हो सारी दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई की भी बुद्धि का योग बाप के साथ नहीं, बाप की पहचान ही नहीं है। क्योंकि पहचान हो तो बुद्धि योग हो। इसलिए शास्त्र में भी लिखा हुआ है फोटो में भी कोई और कोई में भी कोई, अर्थात करोड़ों मनुष्यों में से कोई परमात्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने वाले करोड़ों में से उन कोई में भी कोई उसको प्राप्त करते विचार किया जाता है। दूसरे जो धर्म स्थापन करते हैं तो वहां ऐसी बातें होती हैं, ये तो है सभी का बाप, चाहे अपना धर्म हो चाहे दूसरा धर्म हो, ये तो सबका बाप है, ये जानता तो सभी को, ये है बेहद का बाप, इससे वर्षा मिलता है। वर्षा उनको मिलता है जिन्हों को कल पहले मिला, इसलिए हिसाब किया जाता है फोटो में को, दूसरे धर्म वाले की बात नहीं है। भारत को ही स्वर्ग बनना है, भूमि तो यही है, जो स्वर्ग की भूमि थी वो ही फिर नरक की भूमि बनी, दूसरे खंडों की बात नहीं, भारत भूमि की ही बात है। देवी देवता धर्म जो कहाँ कहाँ बिछुड़ गए वो कहाँ से भी आकर के वर्षा जरूर लेंगे। कहाँ बिछुड़ गए देवी देवता सनातन धर्म के, कहाँ बिछुड़ गए, दूसरे दूसरे धर्मों में जाकर के बिछुड़ गए, भारत से दूर हो गए, वो आकर के वर्षा लेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी था, भारतीय श्रेष्टाचारी बनना है, यहाँ ही कहते हैं भारत में भ्रष्टाचार को बंद करो, ये बातें और कहाँ नहीं, भारतवासी खुद समझते भारतवासी श्रेष्टाचारी थे या भ्रष्टाचारी बने, ये नहीं समझते कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्टाचारी कौन बना दे, तो है भ्रष्टाचारी पति दुनिया, इसमें भी खास भारत, क्योंकि भारत ही पावन, इसमें दूसरा कोई धर्म नहीं, वो ही भारत अब पति से बना, तो ये भी समझाना पड़े, जो भी आवे उनको समझाना, उनको मालूम है भारत सुर्ग था, देवी देवताएं राज्य करते वो सारे विश्व के मालिक, ऐसे ऐसे चेक करनी होती, जानते हो भारत ही सबसे प्राचीन देश है, भारत ही स्वर्ग जब नई दुनिया अभी कभी वो भारत पतित है, तुमको स्वर्ग नहीं कहते, वो तो नरक देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो तो स्वर्ग में थे, उनके चित्र हैं वो चरित्र करने वाले कहाँ थे, वो थे स्वर्ग में, अभी वो नहीं, नरक में तो देवी देवता हैं, हो ही नहीं सकते, तो बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए, है बहुत सहज, हम अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, खुशी भी होनी चाहिए, हम स्वर्गवासी बन रहे, बैठे तो यहाँ ही भल हमारे लिए संगम युग है, परंतु बैठे तो पति सृष्टि में है ना, सिर्फ धर्म बदला, बुद्धि कहती है हम संगम युग पर, अभी हमको बाप लेने आया हुआ, ये तुमको बुद्धि मिली हुई है, ये मीठी मीठी बातें किसी को भी समझाना बहुत सहज है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, आज सनातन एक ही देवी देवता धर्म था, तो भी पहले सतयुग में सूर्यवंशी थी, देवी देवताओं पर राज्य था, संपूर्ण निर्विकारी थे, त्रेता को संपूर्ण नहीं कहा गया। तो हम भेंट करते हैं सतयुग और कलयुग की, सतयुग स्वर्ग और कलयुग नर्क, हम त्रेता और द्वापर को उठाते नहीं। स्वर्ग का नाम कितना मीठा है, चित्र भी ऐसे बनाने चाहिए जैसे राम राज्य वाला चित्र है, तो उसमें ये लिखना चाहिए फलाने संबत से फलाने संबत तक राम राज्य, अच्छा थोड़े परंतु बहुत बड़े, भ्रष्टाचारी को पतित राज्य, 2500 वर्ष से भ्रष्टाचारियों का पतित राज्य, 2500 वर्ष से 5000 वर्ष, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, ज्ञात से लिखा तो कोई पढ़ नहीं सकते, क्लियर अक्षरों में तो मनुष्य समझेंगे, दूर से ही मनुष्य और ही पढ़ सकेंगे। तो मुख्य भारत को ही दिखाना, भारत इतना अच्छा था, भारत इतना गंदा, भारत का गोला बना करके ऊपर में रावण खड़ा कर देना चाहिए और लिखना है ये कि पतित भ्रष्टाचारी रावण राज्य है, ऐसी युक्ति से लिखना है जो मनुष्य समझे बरोबर। अभी तो हम सभी नरकवासी भ्रष्टाचारी, कलयुग अंत में है रावण राज्य नरक, लक्ष्मी नारायण को राज्य को कहेंगे पावन भ्रष्टाचारी दैवी स्वराज्य, स्वर्ग 1 से 2500 वर्ष, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा, एक ही चापे को एक ही चित्र वो दिखला करके फिर ये दिखलाना चाहिए कि मनुष्य सहज ही समझ जाए, स्वर्ग को भी दिखाना है कि वहां से ऐसे फर्स्ट क्लास महल होते हैं, कलयुग में कितनी मारामारी दुख आदि है, तो ऐसे ऐसे चित्रों पर समझाना बहुत सहज हो जाएगा। सत्य प्रेता में कोई पति तो होते नहीं, वो है ही पावन दुनिया, तो ऐसे बड़े चित्र को ही मनुष्य समझेंगे कि अब ये दुनिया बदली हो रही है, इस पुरानी दुनिया को अब खलास होना, तो इसको फिर समझाना बहुत सहज हो जाएगा। आज ये समझाते हैं, 6 माह के बाद फिर और कुछ समझा देते, हो सकता है चित्र भी और बनाते जाने, क्योंकि इस ज्ञान में अल्टरनेशन करेक्शन तो चलती रहती है। योग पर भी समझा सकते, ये है सहज योग, हमारा योग ये कि शिव बाबा से, मनुष्यों की योग तो इधर उधर भटकती रहती, कोई का किसके साथ, कोई का किसके साथ, कोई गणेश को याद करेंगे, कोई हनुमान को याद करेंगे, कोई कृष्ण को याद करेंगे, कोई शंकर को याद करते हैं, या हमारा एक के साथ योग है, तो ये फिर अलग दिखाया जाए, यहाँ एक को याद करते हैं, मेरा तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा, दूसरा अनुकूल वो बाबा तो समझाते, बनाने वालों को बनाना है, बाबा का विचार चलता रहेगा, इसमें ये डालना है, ये करें, करेक्शन करना है, जब तक चित्र बन करके तैयार हो जाए तब तक बाबा का ख्याल चलता रहे। चित्र बनाने की जो सर्विस करते हैं उनको भी बहुत फायदा हो सकता है, अपने मुख्य हैं ही थोड़े से चित्र, बाकी तो ढेर के ढेर चित्र बनते, हमको इतने चित्रों की दरकार नहीं, कितने चित्रों की, जो भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर के क्रोधते हैं उनकी हमको दरकार नहीं है। हमको सिर्फ दरकार है थोड़े से चित्रों की, क्योंकि ये अपने मुख्य चित्र। तुम किसको भी समझा सकते हो, बताओ ये कौन सा युग है? जरूर कहेंगे अभी कलयुग है। कलयुग था जब देवी देवताओं पर राज्य था, अभी सभी नर्कवासी पावन दुनिया है, चल बाकी नदियों आदि में स्नान करने से मनुष्य पावन देवता बन जाएंगे क्या? कलयुग में चले जाएंगे क्या? ये तो हो नहीं सकता। कलयुग था अभी नर्क बन गया, फिर नई दुनिया स्वर्ग बाप ही बनावेंगे। सभी का बाप एक ही है, स्वर्ग तारे कैसा परम पिता परमात्मा ही कहा जाता है। स्वर्ग की रचना कौन करते? स्वर्ग की रचना श्रीमत पर हम करते। वहां मकान आज भी बच्चों को ही बनाने होंगे। बाबा तो मकान बना करके नहीं देते।
वहाँ मकान बनते नहीं, बन रहे हैं यहाँ तो मकान।
कौन से मकानों की बात हुई है? कटिंग में तो मकानों की दरकार ही नहीं। मकान तो वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ सर्दी और गर्मी होती है, जहाँ देह अभिमान होता है, जहाँ विकार होते हैं, जहाँ ईर्ष्या द्वेष होता है, वहाँ दीवारें खड़ी की जाती है। कौन से मकान की बात है जो बाबा नहीं बना लेंगे? कौन सा बाबा?
तू बाबा
वहाँ मकान आदि भी बच्चों को ही बनाने होंगे, बच्चे ही बना देंगे। बाबा तो नहीं मकान बना करके देंगे। बाबा तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं श्रीमती जी, कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओ। तो मकान कौन से हुए? कौन से महल बनाने हैं बच्चों? मुरली में तो कहा कि बच्चों को कोई प्रॉपर्टी बनाने की दरकार ही नहीं। हाँ, संगठन रूपी महल या मकान बनाने की बात है, स्कूल मकान वहाँ सचिव में बनाने की कोई बात होती नहीं। वहाँ तो मौसम ही सदा बाहर ही होता है। तो यहाँ से मुक्ति धाम जाए तो नंबर बार के वापस आना है। बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहता है, जिसको बुद्धि में धारणा होती है उन्हों को फिर हर्ष होगा। ये ज्ञान की बातें किसी के कानों में डाले, अगर किसको दान नहीं करते हैं तो गोया उनमें ज्ञान ही नहीं। ये समझ आनी चाहिए, गरीबों के पास धन ही नहीं होगा तो दान क्या करेंगे? धारणा होती है तो दूसरों को भी कराने, नहीं तो कोई काम के नहीं रहे, हक भी नहीं पा सकेंगे। ज्ञान से अति इंद्रिय सुख नहीं भागता। हीरा, सोना, चांदी, तांबा ये मनुष्यों से भेंट की जाती है। सत्युग में कैसी आत्माएं होंगी? सोने जैसी आत्माएं होंगी। और संगम युग में कैसी शेष आत्माएं होंगी? हीरे जैसी शेष आत्माएं होंगी। तो इनके महल बने, मानो हीरे जैसा संगठन बनेगा, हीरे जैसी आत्माओं का संगठन, जिसमें सब हीरो होंगे। खानी भरी होगी, जब वो सचिव शुरू होगा तो खान होगी, अभी तो दिखाई नहीं पड़ता। सारे हीरे जवाहरात मुसलमानों के पास चले गए, हमारे पास तो है ही नहीं। यहाँ तो कांटों का जंगल बना पड़ा है, सब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सब झूठी आत्मा। तो ज्ञान से अति इंद्रिय सुख भाषा नहीं है। अतिय सुख काय से भागता है? जितना याद में रहेंगे उतना अतिय सुख भागता रहेगा। समझा जाता है कि इनमें कुछ ज्ञान नहीं है जो किसी को नर्कवासी से स्वर्गवासी नहीं बना सकते। ये तो बस नाते कहनी है, जो अच्छी नीति धारण करो और क्या आते हैं राजा रानी बनेंगे, जो न करते हैं न कराते हैं वो जाकर के दास दासियां था बस नाते पहनी बने। उनको ये ख्याल नहीं आ सकता कि जाकर के राजा रानी बने, दान पुण्य करना तो मशहूर है। साहूकार 500 रुपया दान करेंगे, गरीब खाना दान करेंगे, तो ये भी ऐसे जिनके पास बहुत धन है बहुत साहूकार बनेंगे। जो दान नहीं करते हैं उनको दान दानी नहीं कहते, दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है। तो बच्चों को ज्ञान रत्न धारण करके और फिर धारण कराने इसको भी समझाना बहुत सहज है। कहाँ शादी मुरादी में जाते हैं तो वहाँ भी ये चिट चैट कर ली, कहाँ कहाँ शादी में और मुरादी किसे कहती
है?
हाँ कोई मर जाते हैं तो वहाँ भी यही चिट चैट कर ली। स्वर्ग में भारत कितना सुखी था, वहाँ हिंसा की कोई बात नहीं होती। स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव जयंती भी भारत में नहीं मनाई जाती। तो ऐसे ऐसे शिक्षा भी तुम कर सकते हो। कोई तो आपस में मिलते हैं तो ज्ञान की ही बातें करते, और कोई तो आपस में धर्म हुई धर्म हुई संसार समाचार की बकवास करते रहेंगे। क्या वास्तव में शिष्टाचारी बनाने को ही बनाने के लिए आपस में बातें करनी चाहिए? आपस में मिले तो कौन सी बातें हों, ज्ञान की बातें करनी चाहिए संसार समाचार की बातें। अगर संसार समाचार की भी बातें करें तो उनको भी अलौकिक रूप में ध्यान करके करें, गर्म हुई झगम हुई नहीं। अगर दुनिया भी बातें करते हैं तो भ्रष्टाचारी ठहरे। क्या लौकिक बातों को अगर अलौकिक जामा नहीं पहना सके और लौकिक बातें ही करते हैं सिर्फ तो कौन ठहरे भ्रष्टाचारी? क्यों बुद्धि कहाँ रमी हुई है भ्रष्टाचारी दुनिया में? तो आपन को देखना है हम क्या सर्विस करते। समझा जाता है इनमें ज्ञान नहीं है तो आपस में कब शिष्टाचारी बनने की बातें नहीं करी, भ्रष्टाचारी की ही बातें करते रहे। तो ये डिसर्विस हुई है। सर्विस करने वाले को सर्विस का शौक दिखा लो। बाबा तो समझाते हैं तुम कहाँ भी जाकर के सर्विस कर सकते हो। दिल में यही उमंग रहना चाहिए हम कैसे बहुतों का कल्याण करें, सुख धाम का मालिक बनावे। इस दुख धाम को तो अब आग लगनी, कुंभकर्ण की नीति में सोए हुए आग लग रही है। तुम बच्चों को ये बतलाना है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो हम ही स्वर्ग में जा रहे हैं, बाकी तुम रह जा रहे हैं। तुम कृष्णपुरी में जा नहीं सकेंगे तो आओ हम तुमको बता दें कि नर्गवासी और स्वर्गवासी कैसे बनते। नरक के विनाश की तैयारियां तो हो रही, तो ऐसी ऐसी बातें सुनानी चाहिए? शिष्टाचारी कहा जाता है देवताओं को और भ्रष्टाचारी कहा जाता है दस्यों। क्या दैत्य कैसे बना और देवता किससे बना? हाँ दिति से बना दैत्य, जो दिति की संतान हुए वो बने दैत्य। और एक है अदिति अद्वैत, अद्वैत का मतलब कोई दूसरा नहीं, उसी से बनता अदिति। ये नई सृष्टि का बनना दिखाया गया है शास्त्रों में, तो उसमें इस तरह दिखाते हैं। बात तो यही की है कि कश्यप मुनि जिन्होंने किसके द्वारा सृष्टि का आरंभ हुआ उनके दो पत्नियां थी, एक दिति और दूसरी अदिति। द्वैत और अद्वैत माना, द्वैत माना दो भात, दो दो को बुद्धि में रखने वाली, और अदिति अद्वैत मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो दो पत्नियों की जो बात बुद्धि में आई तो उससे दैत्य और देवता बन गए। यही राज है स्वर्ग और नरक का। नरक में क्या होता है, नरक में क्या होता है, वैश्याल होता है, वैश्याओं को अनेक पति होते, और स्वर्ग में क्या होता है, आदिति, वहां कोई दूसरा होता ही नहीं, तो उसको शिवालय कहेंगे, वैश्यालय नहीं कहेंगे। तो भ्रष्टाचारी कहा जाता है दैत्यों को। तो दिति से पैदा होने वाले जो हुए वो सब दैत्य हो गए। अभी हमको बाप का फरमान मिला है कि सर्विस करो, गाय की सर्विस करो, मनुष्य देवता बनाने की सर्विस करो, दैत्य बनाने की सर्विस नहीं करो। दैत्य मानो अनेकों में बुद्धि फंसाने वाले। ब्राह्मणों का धंधा ये जो औरों को सुखी बनाने की सर्विस करते, क्योंकि शिष्टाचार में ही सुख है और भ्रष्टाचार में सुख है। वो दिल पर करते हैं जो सर्विस करते, वो सर्विस पर जाते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें जाकर के सुनानी, सभी के दिलों को खींचते। तो तुम कहाँ भी सर्विस कर सकते हो, बस में अथवा ट्राम में बच्चा बांटने की सर्विस करते रहना, बाबा को ख्याल करती रहती है कैसे बच्चों से सर्विस करा। सर्विस तो बहुत है, पहेलियां भी बहुत अच्छी है, इसको तीर लग जाए तो पुराणों से भी सीखे जा सकते। तो किसको तीर लग जाए तो पुराणों से भी सीखे जा सकते, ऐसे भी बहुत नए नए आने वाले हैं, और पुराने कुंभकर्णी नींद में सोए पड़े हैं। जो पुराने पुराने हैं वो कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सोए पड़े, और नए नए ऐसे आते हैं जो पुरानों से भी तीखा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, जो औरों को जगाते हैं खुद भी जग पड़ते हैं। जो औरों को जगाते नहीं है वो है शूद्र कुंभकर्ण संप्रदाय। और ये ब्राह्मण इनको कौन सा ब्राह्मण कहेंगे, कुंभकर्ण ब्राह्मण। रावण भी क्या था, वो भी ब्राह्मण था, कुंभकर्ण वो भी ब्राह्मण था, तो ये कुंभकर्ण ब्राह्मण कहेंगे। न खुद पूरा जागते हैं और न औरों को जगाते, खुद भी सोते रहते हैं और दूसरों को भी विकारों की नींद में खुलाते रहते हैं। सेना में नंबर बात सभी प्रकार के तो होते है, तो मनुष्यों की ही बात, बंदरों व दैत्यों आदि की कोई बात यहाँ है नहीं। भक्ति मार्ग में तो चित्रों में क्या क्या बनाए दिए हैं, बंदर बुद्धि होने के कारण चित्र भी ऐसे बनाए देते हैं, बाप आकर के बंदर से मंदिर लायक बनाते। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों न हम पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजा रानी बने। पढ़ाने वाला तो एक ही एम ऑब्जेक्ट है ही, नर से नारायण बनने फिर पद तो नंबर वार होते, चलन से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस तो बहुत बच्चे करते, सर्विस के उन बच्चे कितने मीठे रायल और हर्षित मुख होते। बुद्धि में ये ख्याल आज चलता रहता है कि कैसे किसको विश्व का मालिक बना दें। कई तो बंधन मुक्त होते भी सर्विस नहीं करते। भांडेली माता है, बंधन में है तो सर्विस नहीं करती तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई कोई को तो कोई बंधन भी नहीं फिर भी सर्विस नहीं करती, और कई फिर बंधन वाले भी बहुत सर्विस कर रहे हैं, वो तो बंधन में जिंदगी फंसी हुई है लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा करने में माहिर, तो नंबर वार हो गए। बाप का काम है शिक्षा देना, बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, सभी को सुख तो पहुंचा नहीं है, बाबा सुख का रास्ता बता रहे, उसका सागर है बाबा, मनसा वाचा करुणा किसको सुख नहीं देना चाहिए, कोई कुछ बोलता है तो रिपोर्ट करनी चाहिए, क्या बताया ना अपने हाथ में नहीं उठाना, क्या करना है कि अगर कोई कुछ बोलता है उलट सुलट तो बाप को रिपोर्ट करो, अपने हाथ में ला उठा करके बोलना नहीं, उल्टा सुलटा विकर्म नहीं करना है, है? तो जहाँ हो वहाँ दे रिपोर्ट, जहाँ नहीं है वहाँ काहे के लिए रिपोर्ट करो, उन लोगों को छोड़ो, उन सारी दुनिया से हमें क्या लेने लेना, आप हुए तो मर गई दुनिया, सारी दुनिया 500 करोड़ नहीं जानती, 500 करोड़ दुनिया वो तो मर गई हमारे लिए, अब हम तो जानते हैं, तो जो जानते हैं वो तो शुरू करें पहले। तो बहुत रहम दिल बनना होता है, ऐसे छोटे छोटे पर्चे आबू में भी बहुत बांट सकते हो, कोई न कोई निकल आ गए, बहुत लंबे चौड़े पर्चे बांटने की जरूरत नहीं है, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है, सर्विस का जिसको ध्यान नहीं है वो दिल पर नहीं चल सकती, जिसको समझाने के लिए किस्म किस्म के नए नए चित्र निकलते रहेंगे, प्रोजेक्टर के चित्रों पर कैसे समझाना चाहिए वो भी सीखना है, अच्छा माता पिता बाप दादा का संस्कार बच्चों के प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, मुरली की बात, समय प्रति समय ये सूचना दी जाती है कि कहाँ से भी कोई जिज्ञासु बिना टीचर की चिट्ठी के आता है तो उनकी कब कोई खातरी नहीं करनी, लेकिन अब तक भी ऐसी बातें होती रहती हैं, इसलिए फिर से ध्यान खिंचवाया जाता है कि बिना किसी किसी की खातरी नहीं करें, और जहाँ तक हो सके तो जनरल क्लास में भी चिट्ठी व परिचय आदि लेकर ही छुट्टी देनी, नहीं तो कहाँ कहाँ हंगामा करने वाले भी झूठा स्टूडेंट का रूप धारण करके अंदर घुस पड़ते, इसलिए हरेक ब्राह्मणी को बहुत खबरदार रहना, या तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी होगा तो बातचीत करने से ही पता लग जाएगा, कि चिट्ठी से पता लगेगा, हैं? वो बातचीत से ही मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी है या नहीं है, ब्रह्मा का ज्ञान धारण किया है या नहीं किया। दूसरी बात ये भी ध्यान में दी जा रही है कि पार्टी मधुबन में आती है तो 15 दिन पहले ही सूचना देना अति आवश्यक, तो बैठने की जगह की कमी है, तो वाणी चल रही थी 1911-89 की, 1911-89 की वाणी में पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ग्रुप से बात हो रही है, सभी अपने को महावीर और महावीरनीय समझते हो, पंजाब वाले हरियाणा वाले हिमाचल ग्रुप वाले महावीर तो हो लेकिन सदा महावीर हो, कभी कभी महावीर बन जाए और कभी कभी गीदड़ बन जाए तो नहीं, सदा के महावीर, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते, सदा के महावीर अथवा सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। क्या लाइट हाउस मानो? ज्ञान की लाइट से भरे पूरे। और माइट हाउस मानो? योग की पावर से भरपूर। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी हो और योगी तू आत्मा भी हो। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां, लाइट और माइट संपन्न, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी न हो। लाइट किसको कहा जाता है? ज्ञान को ही लाइट कहा जाता है। शिवलिंग दिखाते हैं तो शिवलिंग के आसपास चारों तरफ क्या दिखा देते हैं? लाइट दिखा देते हैं। तो क्या क्या ये जड़ रोशनी की बात है क्या? ये कौन सी बात है फिर? ये जड़ रोशनी क्यों दिखाते हैं बिंदु के आसपास?
लिंग
के आसपास ज्ञान की प्रकाश की अग्नि है कि बिंदु
यादगार?
किस बात की यादगार? किसमें? लिंग में। हाँ, लिंग माने साकार। जिस साकार में परमात्मा प्रवेश करता है ज्योति बिंदु, वो लिंग अर्थात वो शरीरधारी ज्ञान की लाइट से भरपूर रहता है, इसलिए ज्ञान की लाइट दिखाई जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं और माइट अर्थात योग की कमी न हो। अगर एक बात की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेगा, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वो पास क्या हुए? जैसे स्कूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से एक वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते, तो समय लग गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा, लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देंगे। पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उनको ऑनर देगा। क्या देगा? माना भविष्य में। अभी वर्तमान में दे रहा है या नहीं दे रहा है ये नहीं कहा, भविष्य में जब रिजल्ट निकलेगा तो धर्मराज भी उनको ऑनर देगा, क्योंकि वो धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खाएंगे, बाकी सब सजाएं खा जाएंगे। धर्मराजपुरी में वो सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, उनको सम्मान मिलेगा, गायन होगा कि ये पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना, सब बात में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? कोई नहीं, बन रहे, इसीलिए विनाश रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है। कंप्लीट बन रहे हैं, बने नहीं है, इसलिए विनाश रुका हुआ है। अपने को रोका हुआ है तो विनाश भी रुका हुआ है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश होना चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूल तो आप ब्राह्मण हैं। कौन कौन से ब्राह्मण बताए? किन के लिए भी विनाश रुका हुआ है? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप के ब्राह्मणों के लिए विनाश रुका हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए ताकि जल्दी से विनाश शुरू हो जाए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए फिर आतंकवादी तैयार हो गए। तो पंजाब में ही आतंकवाद जाती है। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी होकर के रहेंगे? अनेकों से तो अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं सोचते हो? कोई आतंक नहीं है, बेहद में कोई आतंक नहीं है, बेहद में आतंक नहीं है, है? बेहद में कोई आतंक नहीं है। और बेहद जब हद में आतंकवादी हैं तो बेहद में भी आतंकवादी जरूर होंगे। तो ऐसे तो नहीं सोचते हो कि अनेकों से तो अच्छे हैं? अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। क्या कहा? करोड़ों में से कोई बन गए, करोड़ों में से 500 करोड़ में से कोई ने ज्ञान ले लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन कोई ने ज्ञान लिया, पहचान ली, उन पहचानने वालों में से कोई बनना है। कोई बनना माना प्राप्ति करने वाला बनना है। तो इसलिए सदा एवर रेडी हो। अंत में रेडी नहीं बनना, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बाप दादा पंजाब दो जोन को सदा आगे रखते, क्या क्यों है? रखना जरूरी है। क्यों?
मेरे
पंजाब है। अरे तेरे तेरे अच्छे को मजबूत को आगे रख दिया तो क्या बड़ी बात हो गई है? बाप दादा पंजाब जोन को सदा आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब ही ऐसा जोन है जिसने विदेशियों से सदा आगे बढ़ करके टक्कर ली। दूसरों ने पहले पहले टक्कर नहीं ली। विदेशियों के जब पश्चिम से आक्रमण हुए तो पहले टक्कर किसने ली? पंजाब ने। इसलिए एवर रेडी रहना, क्योंकि बाप भी पंजाब को आगे रखते हैं। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी है पंजाब पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी वगैरह पर नहीं पड़ी। पहली नजर किसके ऊपर पड़ी है? पंजाब पर। जैसे दिल्ली के लिए बोलते हैं दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है, तो बाप की भी नजर है। वो तो दिल्ली की बात हुई, लेकिन पहली नजर किसके ऊपर पड़ी? बाप की, पंजाब की। तो जब बाप की नजर पहले पड़ी है तो आना भी पहले नंबर में है क्या? ऐसे थोड़े ही कि नजर पहले पड़े और आना बाद में है। आप फाउंडेशन वाले हो क्या? देवी देवता सनातन धर्म की राजधानी की फाउंडेशन तो पढ़नी है, लेकिन फाउंडेशन पढ़ती किसके द्वारा है? निमित्त कौन बनते हैं फाउंडेशन वाला? نیو کا پہلا پتھر, اس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن, ادگاٹن کہیں یا شلانیاس سماروہ کریں, کہیں شلانیاس سماروہ. تو جب باپ کی نظر پہلے پڑی تو آنے بھی پہلے نمبر میں فاؤنڈیشن والے ہو, تو فاؤنڈیشن سدے پکا رہتا ہے. اگر کچا ہوا, فاؤنڈیشن کچا ہو جائے تو ساری بلڈنگ کچی ہو جائے گی. تو پکی راجدھانی استھاپن ہونی ہے یا کچی راجدھانی استھاپن ہونی ہے؟ سڑک کی راجدھانی تو پکی ہی استھاپن ہونی ہے, تو فاؤنڈیشن بھی پکا ہونا چاہیے. تو سدا اسی وردان کو یاد رکھنا کہ ہر پرستھتی میں پانچ ودھانر بننے والے, اس کی ودھی ہے کیا؟ پانچ ودھانر بننے کے لیے کیا ودھی بتائی؟ سدا ایور ریڈی رہنا. پھر پنجاب زون تھا یو پی گروپ سے ज्ञान सागर बाप से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? यूपी में गंगा का महत्व क्यों है? क्योंकि और कोई नदी को पतित पावनी नहीं कहते क्या? विदेशी नदियों को तो पतित पावनी कहते ही नहीं है, न वहां कोई स्नान करने जाते. जड़ नदियों की तो बात ही नहीं क्या? है तो चैतन्य नदियों की ही बात. तो विदेशों की तो बात ही छोड़ो, विदेशी नदियों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन भारत में भी और नदियों को पतित पावनी नहीं कहते उतना जितना गंगा को कहते. गंगा को ही पतित पावनी कहते, यमुना नदी को पतित पावनी नहीं कहते, उसे तो चरित्र भूमि कहते हैं. यमुना नदी के किनारे भगवान ने चरित्र दिखाए, उसके किनारे पतितों को पावन नहीं बनाया, लेकिन है चरित्र दिखाए. तो नदी कौन सी पतित पावन हो सकती है? कौन सी नदी पतितों को पावन बनाने वाली हो सकती है? इस नदी का बाप से पूरा संबंध हो, नहीं तो वो नदी भी नाला बन जाती. फिर गायन होता है राम तेरी गंगा मैली. क्यों मैली? क्योंकि बाप से संबंध कनेक्शन टूट जाता है. और तो बीज रूपी स्टेज की बात है ना, वो तो बीज रूपी स्टेज की बात है, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो द्वापर के आदि में दिखाया जाता है. द्वापर में, त्रेता की शूटिंग में कैसे? कृष्ण का जन्म कब? द्वापर में हुआ. तो द्वापर की शूटिंग जब हो तब कृष्ण को दिखाया गया असली रूप में, उससे तो पहले तो गर्भकाल दिखाया जा सकता है. तो वो तो गर्भकाल की बात हुई, गर्भकाल की है ना. है चरित्र है लेकिन गर्भकाल की. गर्भ में तो छोटा रूप होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता बहुतों को. क्यों? गर्भ में जो विशेष आत्मा होती है तो गर्भ में ही चरित्र दिखाती है. लालने के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं.
पालने में आने पर मालूम पड़ेंगे.
तो जैसे पालने में मालूम पड़ जाते हैं, वैसे गर्भ में भी बच्चे का पता चल जाता है कि पावरफुल बच्चा है. वह कृष्ण के लिए कहते हैं 10.5 महीने के बाद जन्म लिया, तब तक पकता ही रहा अंदर अंदर. तो यमुना नदी को पतित पावनी नहीं कहते, उसे चरित्र भूमि कहते हैं. पंजाब में भी नदियां बहुत हैं, नदी जहां से निकलेगी तो हरा भरा कर देगी, ये तो बताया कि पंजाब में नदियां बहुत हैं, हरा भरा करने वाली है, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाली है। क्यों? कि बाप से पूरा, एक बाप से पूरा संबंध नहीं, और भी कहीं न कहीं बुद्धि का योग जुटा रहता है। अभी की बात थोड़ी बताई, लास्ट में जब रिजल्ट निकले उस समय की बात बताई कि गंगा हो या कोई भी नदी हो, अगर बाप से पूरा कनेक्शन नहीं जुटा हुआ है तो वो पतितों को पावन बनाने वाली नहीं गाई जाएगी। तो पंजाब की नदी की ये विशेषता बताई कि जहां से भी निकलेगी वहां हरा भरा कर देगी, हरियाली हरियाली कर देगी, हरियाली और खुशहाली। ये काहे की विशेषता है? पंजाब की नदियों की। तो आप सबका भी काम है सबको हरा भरा बनाना। जो आत्माएं सुख शांति के रस में सूखे हुए हैं, ऐसे सूखे हुए को फिर से हरा बनाना, हरियाली लाना, ये आपका ही काम है। जहां सूखा होता है वहां मानव कल कंगाल बन जाता है, क्योंकि अकाल पड़ जाता है, और जहां हरियाली होती है वहां मानव खुशहाल हो जाता है। तो नई दुनिया हरियाली की दुनिया है और पुरानी दुनिया सूखे की दुनिया है। आप सब तो बहती हुई भरपूर नदियां हो, कौन? पंजाब की नदियां। भरपूर मन पानी से लबालब भर दिया है, ज्ञान जल से लबालब भरी हुई भरपूर नदियां हो तो चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। कोई भी कदम ऐसा ना हो जो आत्माओं को हरा भरा बनाने वाला न हो। इस समय सबका विशेष अटेंशन किसकी तरफ है? पंजाब की तरफ होगा। जब फाउंडेशन पक्का पहले किया जाना है तो सबका अटेंशन किसकी तरफ होगा? पंजाब की तरफ होगा। किस बात के लिए? अकाल मृत्यु के लिए। पंजाब में अकाल मृत्यु मंडरा रही है ना, पता नहीं कब कब अकाल मौत हो जाए। आतंकवादी मार मुड़ के चले जाए। तो सबका टेंशन पंजाब की तरफ है अकाल मौत के लिए, क्योंकि पंजाब में आतंकवादी बहुत आतंक मचाए हुए हैं, आक्रमण करते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु पंजाब में हो रही है। कब मारे जाए? यहाँ मरना किस प्रकार का है? कोई स्थूल शरीर से मरने की तो यहाँ बात ही नहीं। फिर मरना किस बात का? ज्ञान से मर जाना। एक तो ज्ञान से मर जाने की बात कि ज्ञान में से ही टूट जाए, और दूसरा श्रेष्ठ जीते जी मर जाना। तो डर किस बात में? जीते जी मरने में डर होता है। जीते जी मरने का तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, तो उसमें डर काहे का? उसमें डर की तो कोई बात ही नहीं। ये तो हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं कि हम जीते जी मर जाएं। तो डर किस बात का होता है? कहीं ज्ञान में से न छूट जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे आतंकवादी आतंक फैलाए हुए हैं, उखाड़ पछाड़ चल रही है। तो आप सभी अकाल मृत्यु से बचाने वाले हो ना? पंजाब वाले क्या करने वाले हो? आतंक वाले आतंक फैलाएं और आप अकाल मौत से बचाने वाले। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान देकर के अमर बनाओ, जो जन्म जन्म अकाल मृत्यु से बच जाए। जब सतयुग शुरू होगा तो वहां कोई अकाल मौत मरेगा नहीं, सब अमरनाथ के बच्चे अमर होंगे, कोई मरने वाला ज्ञान में होगा नहीं। अभी तो आज ज्ञान में जन्म लिया और कल कल मर पर, सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होगा, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देंगे, क्या जबरदस्ती खींच के उनका देह अभिमान नहीं मारा जाएगा, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अपने देह अभिमान को खलास कर देंगे, माना इच्छा मृत्यु। जैसे ये पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करें। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो बदल देते हो, ऐसे समय प्रमाण आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे तो आप बच्चों को, ऐसी दुखी आत्माओं को ये खुशखबरी सुनानी चाहिए कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। खुद बचे होंगे तो दूसरों को भी बचा सकते हैं। आजकल अकाल मृत्यु का ही डर है, कहाँ पंजाब में, पता नहीं कब खेल कलाश हो जाए। डर से खा भी रहे हैं तो चल भी रहे हैं तो सो भी रहे हैं, ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुना करके उनको भय से छोड़ाओ कि डर की कोई बात नहीं। मानो ये शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्या बात सुनाओ?
ज्ञान रख सुनाओ कि भय से न मरे, बात की याद न मरे, ज्ञान की
उनको खुशी होगी कि हम अकाल मृत्यु से बचने वाले, कुछ साथ में ले जा रहे, खाली हाथ नहीं जा रहे। तो ये सेवा करते हो या डरते हो कि हमें न कहीं गोली लग जाए, कोई आतंकवादी विदेशी आकर के हमको ही न धराशाही कर दे, ज्ञान में से तोड़ मरोड़ के अलग फेंक दे। तभी बहादुर हो ना, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख सहन चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो, दम चक्कर मचाने वाला हो, वो भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? उन आतंकवादियों की बात ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञान में ही अज्ञान की गोली छोड़ने वाले आतंकवादी हैं, जो न खुद बाप को पूरा पहचानते हैं, न बाप के देश को पूरा पहचानते हैं। उनको ये धारणा ही नहीं है कि भारत में ही भगवान आते हैं, तो वो अपनी अज्ञान की गोलियां छोड़ते हैं। तो ये सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गोली न लग जाए? तभी बहादुर हो ना, कैसा भी आतंकवादी हो, प्रेम और शांति की शक्ति से शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से ही परिवर्तन करते हो ना, अपना भाई उसको बना देते हो। तो सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं हैं इस अनुभूति में रहो। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा चाहे प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो या कमजोर हो, अगर एक ही भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। समय पर छोटा सा शस्त्र भी अगर किसके पास नहीं है तो नुकसान हो जाता है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर्फ शक्तिवान नहीं, यही टाइटल याद रखना, सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना, कभी भी मुरझाना नहीं। कौन? पंजाब वाले, तन भी खुश, मन भी खुश, और धन भी खुशी से कमाने वाले और खुशी खुशी कार्य में लगाने वाले। जहाँ खुशी है वहाँ एक सौ भी हजारों के समान होता है, खुशहाली आ जाती है, और जहाँ खुशी नहीं वहाँ एक लाख भी एक रुपया बन जाता है। तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले, दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव, क्या पंजाब वालों को दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो? कौन पंजाब वालों को दाल रोटी सिर्फ मिलती है क्या? इतनी दाल रोटी है कि खूब हरे भरे हैं। अभी तो कहा पंजाब में नदियां हरा भरा बनाने वाली, तो ये लौकिक की बात है या अलौकिक की बात है? हैं, जरूर अलौकिक दुनिया की ये बात है कि दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो, इतनी खुशी चढ़ी हुई हो। जैसे आत्मा को खुशी जैसी कोई दूसरी खुराक नहीं होती। तो सदैव यही याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले। मुरझाना काम माया के साथियों का है, और खुशहाल रहना ये काम बाप के बच्चों का है। अपने को गरीब कभी नहीं समझना कि हमारे पल्ले तो दाल है रोटी पर ही, दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ। अपने को कभी गरीब नहीं समझना, सबसे साहूकार हम हैं। कौन है? पंजाब वाले। दुनिया में साहूकार देखना हो तो कोई आपको देखे, कौन से धन से? ज्ञान रत्नों के धन से। क्योंकि सच्चा धन तो आपके पास है। किसके पास? पंजाबियों के पास। विनाशी धन तो आज है, कल नहीं होगा। विनाशी धन तो आज है किसी के पास, कल नहीं होगा। विनाश होगा सब कलाश हो जाएगा, लेकिन विनाश के काल में भी अविनाशी ज्ञान धन तो खूब काम आवेगा। लेकिन अविनाशी धन आपके पास है तो सबसे साहूकार आप हो। क्यों? तो जरूर पंजाब वालों को सबसे जास्ती बाप ने अविनाशी धन दान किया होगा। अब तो बोला है सबसे जास्ती क्या हो? धनवान हो। तो दाल रोटी का रोना नहीं, रोते रहना क्या है? हमको तो बस सादा भोजन दाल रोटी में नसीब हो रही है। लेकिन आप अविनाशी धन के धनवान हो तो सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, पंजाब वाले उनसे पूछेगा कि पंजाब में सूखी रोटियां खाई जाती हैं?